ओम शांति। आप सबका इतना आकर्षण हुआ कि दादी जी आप सबके आकर्षण में यहाँ पहुंच गए। वैसे ऊपर विदेश के भाई बहने बहुत आए हुए हैं, तो लगभग 100 भाई बहने ऊपर से 2-3 बसेस भर के नीचे आई, क्योंकि दादी जी आज जयपुर में, अजमेर में होती, टर्की में वहां जाएंगे, वो दुबई साइड में जाना है उनको, और वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। लेकिन दादी ने ऐसा कहा कि सतगुरु वार जब होता है तो मैं ना मिलूं क्लास से, ये नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ आए हुए बाबा के अनमोल रत्नों से जरूर मिलना है। तो हमने कहा कि आपकी इसका मतलब है कि आप में बहुत ज्यादा आकर्षण है, आप बड़ी विशेष आत्माएं हो जो यहाँ बैठी हैं। चाहे कोई आपको साधारण समझे, समझने दो। हमेशा कहा गया है कि अपना स्वमान कभी ना तजो। कोई मुझे कह दे ये तो ऐसे ही हैं, उनको कहने तो वो उनका कहना है, लेकिन मैं तो बाबा की विशेष विश्व भर से चुनी हुई आत्मा हूँ, और जरूर चुने हुए आत्मा थे, इसलिए अपने आदरणीय दादी जी को आपके प्रति इतना आकर्षण आया। कहा कि वहां अगर बड़े हॉल में जाऊंगी तो सब बड़ी दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ मेरे नजदीक हो तो मैं सबसे मिलूं, इसलिए आप सबको नजदीक नजदीक बुला रहे थे कि नजदीक होकर बैठो। और अभी लगभग 100 भाई बहन विदेश के बैठे हैं, दादी थोड़ी देर मिली है और गुलजार दादी जी को उनके साथ मिलने के लिए बिठा आई। परंतु दादी हमेशा जब भी यहाँ होते हैं तो सतगुरुवार में लंदन में क्लास जरूर कराते, तो अभी उनकी क्लास का टाइम वहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ इतने बजे हैं तो वहाँ सुबह का ही टाइम है। अभी भोग वहाँ लगा है और उसके पश्चात वो दादी की क्लास सुनते हैं, चारों तरफ से सब तरफ से वहां आकर बैठ जाते हैं। तो दादी ने कहा लंदन क्लास का टाइम हो गया है इसलिए मैं जा रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि लगभग 95 साल की दादी जी की आयु है, लेकिन मैं दादी के पास 10:30 बजे गई, अभी तक दादी को स्नान करने की फुर्सत नहीं मिली थी, और अभी स्नान करने जा ही रही थी, कहा कि मैं जल्दी से जाती हूँ, तो इतने में 10 भाई बहने आए, कहा दादी हमारी फ्लाइट का टाइम है, हमको अभी यहाँ से अहमदाबाद जाना है, नहीं तो फ्लाइट में लेट हो जाएंगे। दादी ने पुनः अपना पहना और फिर उनके पास जाकर बैठ गई। तो ये पता चलता है कि अथक सेवाधारी इन दादियों ने इस यज्ञ को कहां से कहां लेकर आई। आप सोचिए ये यज्ञ आज इतना फलीभूत हो रहा है, दिनों दिन इसके सेवा स्थल बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें हमारी आदरणीय वो दादियां जिन्होंने प्रारंभ से इस यज्ञ में अपने त्याग के आधार से तपस्या को बढ़ाया, और तपस्या के आधार से इस वातावरण को श्रेष्ठ और शुद्ध करने में चारों तरफ सहयोग दिया, तो ऐसी आदरणीय दादियों के 2 क्षण 2 वचन सुनने के लिए भी सभी लालयित हो जाते हैं। तो मैं घेरने के लिए इसलिए मना कर रही थी क्योंकि आप समझ सकते हैं विदेश का कुछ वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ मिलते जरूर हैं लेकिन रॉयल्टी होती है, और यहाँ मिलते हुए सारी रॉयल्टी भूल जाते हैं, भावना में डूब जाते हैं, अगर उनको हो सके तो वो निकलने भी ना दे। इसलिए जब यहाँ पर चारों तरफ भाई ऐसे खड़े हो जाते हैं और जबरन करते हैं, माताएं भी तोड़ के भी उनका हाथ निकलने की कोशिश करती हैं, तो कई बार विदेशी भाई बहन पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों करते, तो हम कहते हैं आपकी भावनाएं कम है, इनकी भावनाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि हम आपकी कभी ग्लानी तो नहीं कर सकते हैं, कि इनकी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप में जरा भावना थोड़ी लिमिटेड है, इसलिए ऐसा होता है। बाढ़ आती है तो बाढ़ थोड़ी देखती है कि कोई बाउंड्री बनी हुई है, बाढ़ तो कूद कर चली जाती है। इनकी जो प्यार है उस प्यार में इनकी बाउंड्री नहीं है, ये कूद के भी चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन कूदना चाहिए नहीं। वैसे वो तो मैं ऐसे ही कह रही, कहीं सचमुच आप समझो कूद के जाना बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन वो तो एक पर्दा डालने के लिए ऐसा कहा जाता है, बाकी और कोई बात नहीं होती है। बाकी डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बाबा दादी जी ने हम सबको एक आदेश दिया और बाबा का बहुत समय से ये आदेश है, जितना हो सके अगर कोई ऐसा जरूरी कार्य नहीं है तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे कम से कम 4 घंटा तो योग कर लो, और सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम वे हमारा अपना टाइम होता है। अब 4 बजे से ही मैं देखती हूँ कई योग करके आएंगे, इतनी बातें करते जा रहे हैं जैसे सारा इतिहास भूगोल आज ही उन्होंने खोल लेना है। लेकिन बाबा की ये आज्ञा है, जितना कम बोलेंगे आपके बोल में ताकत आएगी, जितना कम सोचेंगे उतना आपका सोच एक्यूरेट, जो सोच होना चाहिए वही सोच होगा। और कई बार हम इन चीजों पर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलते रहते हैं। कई बार हम देखते हैं पेड़ के नीचे माताएं झूला झूलती हैं, समझती हैं गांव में ऐसे झूले में गीत गाते थे, हम भी बाबा के गीत गा रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि वातावरण में हम आवाज फैला रहे हैं। और बाबा का ये कहना है कि ये रिकॉर्ड मैंने क्यों चलाए, इसलिए कि मेरे बच्चे वाचा से परे जाने वाले, वानप्रस्थ में जाने वाले, अर्थात वाणी से दूर जाने वाले। तो वाणी से दूर जाने वाले बच्चे अगर वाणी को कम से कम करते चले जाएंगे तब उन्हें वाणी से परे जाने का एक सहज सुलभ साधन मिल जाएगा, और अगर ज्यादा वाणी में आएंगे तो साकार जगत से परे नहीं जा पाएंगे। इसलिए गीत चलते हैं, उन गीतों को सुनो और बाबा की याद में समा जाओ। स्वयं गीत गाने की जब कभी जरूरत है, किसी ने कहा है कि आप एक गीत सुना दीजिए, और आपको गीत गाना या बनाना आता है और आप सुना देते हैं, वो एक सेवा अर्थ हो गया। बाकी ऐसे ही बैठे हुए गुनगुनाते रहे, कईयों की आदत है किचन में काम करेंगे गीत गाते रहेंगे, कहेंगे गीत गाते बाबा की याद में रहे। बाबा हम बच्चों को नहीं कहता है, आप सोचो अगर आप बोलते रहेंगे, स्वाभाविक है बोलने से मुख से कुछ कान निकलते हैं, और वो जो आप भोग बना रहे हो, बाबा का भोजन बन रहा है, उस भोजन में आपके मुख से निकले कण उसमें जा रहे हैं। इसलिए श्रीनाथ द्वारे में जब भोजन बनाते हैं तो भक्त भी अपने मुख के ऊपर कपड़ा लगा लेते हैं, ताकि हमारे मुख से कुछ निकल उस भोजन को अशुद्ध ना कर दे। और हम समझते हैं हम तो बाबा के गीत गा के योग लगा रहे हैं, लेकिन योग में हम भोजन को अशुद्ध कर रहे हैं, ये हमको ख्याल ही नहीं आ रहा। और अगर आपको गीत अच्छे लगते हैं भोजन के समय, तो छोटा सा एक रिकॉर्डर ले लीजिए, उस समय गीत लगा दीजिए, वो गीत चलते रहें और आप प्यारे बाबा की मस्ती में मस्त होकर के वो भोजन बना लीजिए। आप देखो ऐसा भोजन बनाओगे, वो भोजन का प्रभाव मनुष्य जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा। हम कई बार ऐसा समझते हैं कि कई मुल्ला मौलवी आदि जो होते हैं, कई लोग उनके पास जाते हैं कि कोई ग्रहचारी आ गई, कुछ ऐसा वैसा हो गया, कोई छाया आ गई, बच्चा रोता है, चुप नहीं होता, आपस में पिटती नहीं, ऐसा ऐसा कह कहला के उनसे कुछ मंत्र आदि पड़े हुए कुछ ऐसा कागज सा ले आते हैं। ये मैंने एक दृश्य देखा, तो कागज ला करके पानी में घोल करके वो पिला रहे हैं। तो हमने कहा ये कागज को घोल कर क्यों पिला रहे हो, तो कहा कि वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो जो लिख देते हैं वो एक मंत्र बन जाता है और उसको कागज को पानी में घोलकर अगर पिला देते हैं तो उनको बहुत असर हो जाता है, बच्चा जिद करना छोड़ता है, रोना, मानो ऐसी सी बातें। अब आप सोचो किसी एक मंत्र में अगर इतनी शक्ति है तो मनमना भव से बढ़कर मंत्र कौन सा मंत्र होगा। कोई भी भूत प्रेत क्या कहने, कोई नहीं असर कर सकता है। अगर इस मंत्र में रहकर हम भोजन बनाएं, मंत्र में रहकर हम भोजन खाएं और मंत्र में रहकर हम भोजन खिलाएं, क्या आप ये समझते हो कि ये मंत्र उस मुल्ला मौलवी के मंत्र से हल्का है? ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है और उस समय सिवाय एक बाबा के कोई भी याद ना आए। ऐसे बाबा की याद में अगर हम भोजन बनाते हैं, भोजन खाते और खिलाते हैं, ये छोटी सी बात है लेकिन ये हमारी मनोस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। और जिसकी सेवा में हम वो भोजन बनाते हैं उनकी भी मनोपरिवर्तन में बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। कई बार कोई किसी को चुपचाप गुप्त रूप से दवाई डाल के किसी पानी में सब्जी में खिला देते हैं, क्योंकि वो है तो थोड़ा दिमाग का खराब है, लेकिन दिमाग की खराबी वाला कभी ये नहीं समझता कि मेरा दिमाग खराब है। वो कुछ पगलापन उसमें है लेकिन वो अपने को पगला नहीं समझता है। तो डॉक्टर उसको कह देता है कि आप इसको सब्जी में, पानी में, आटे में गूंद के कहीं भी ये गोली डाल दीजिए तो इसके असर दवाई का हो जाएगा। जब वो दवाइयों के असर मनुष्य पागल को भी ठीक कर सकते हैं तो हमारे प्यारे बाबा की याद के शुद्ध शक्तिशाली प्रकंपन किसी मनुष्य के मन की मनोवृत्तियां जो विकार युक्त हैं, क्रोध सहित हैं, लोभमय हैं, ईर्ष्या नफरतमय हैं, क्या वो वृत्तियां उसकी या हमारी निज की ठीक नहीं हो सकती। बाबा हम बच्चों को कहते हैं जब पूछो निश्चय है तो बच्चे हाथ खड़ा करते हमको 100% निश्चय है, लेकिन निश्चय का मतलब ऐसे शब्दों से कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल की बात। जिस पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक बार बाबा ने क्लास में कह दिया, बहुत समय की बात है, यज्ञ की बात है, जब हमको एक बहन ने सुनाया कि बहुत अनन्य बाबा के बच्चे बैठे थे बाबा के सामने, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर महावाक्य उच्चारण कर रहे थे और महावाक्य उच्चारण के मध्य बाबा ने कह दिया, एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी, का बच्ची तुम्हें आज अभी इस यज्ञ से चले जाना है, तुम्हें इस यज्ञ में रहना अलाउ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक अनन्य रतन जो सेवा में बाबा के प्यार के लगन में मगन हो और उसको भरी सभा के बीच में कहा जाए कि तुम इस यज्ञ में रहने योग्य नहीं हो, तुमको यज्ञ छोड़कर चले जाना है, और वो बच्चा जिसने अपना घर परिवार सब त्याग दिया उस प्रभु को प्राप्त कर, ऐसे बच्चे के लिए अगर ऐसा शब्द आए और वो भी किसके मुख से, आदि देव ब्रह्मा और स्वयं शिव बाबा के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं सारी सभा में उस समय कैसी स्थिति होगी। और वो बच्ची सुनकर आश्चर्यचकित है और फिर कहती है, बाबा फिर कहते हैं, बच्ची सुनती हो या नहीं? सुन तो रही है, उठो और अभी ही आपको चले जाना है, ऐसा बाबा का धर्मराज का रूप। सारी सभा खामोश, जिसको कहते सुई भी फेंको तो आवाज आ जाए। अब बाबा उसको कहते जाओ, खड़ी हो गई क्योंकि बाबा कह रहा है, लेकिन अंदर चिंतन तो चल रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे बाबा कहते चली जाओ, लेकिन बाबा कहते जाओ। जा रही है धीरे धीरे कदमों में दरवाजे की तरफ और सभी ऐसे बैठे जैसे कुछ हो गया। जब वो दरवाजे के नजदीक पहुंची, बाबा ने कहा बच्ची वापस आओ। बड़े धीमे धीमे आ रही है उदास, पता नहीं अब क्या कहना है मुझे, निकलना तो कह दिया, अब अगला कौन सी बात है, कहा बच्ची आओ। और बड़े प्यार से कहते बैठो बच्ची। खुशी से थोड़ी जान में जान आई, उसके तो आई हो ना आई हो लेकिन सुनने वालों के तो आ गई, क्योंकि वो भी सब खामोश थे। बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे सुनाओ, जब बाबा ने ये कहा कि ये बच्ची चली जाए तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? कहा बाबा ये चल रहा था ये कहां जाएगी। दूसरा कहते हैं बाबा ये तो बहुत अच्छी थी, हमने ऐसा कोई बात इसकी देखी नहीं, लेकिन आप उसे क्यों निकाल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कही। बाबा ने कहा बच्ची को, बच्ची तुम क्या सोच रही थी, बाबा कहां जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं। बाबा ने कहा आज तुम बच्चों का निश्चय का टेस्ट हुआ और बच्चे फेल हो गए। जब तुम कहते हो ज्ञान का सागर है बाबा, कल्याणकारी है बाबा, तो कल्याणकारी को नहीं मालूम कि इस बच्ची का इसमें कल्याण होगा या अकल्याण होगा, तुम बच्चों को ज्यादा मालूम है। ये बच्ची कहां जाएगी, इसका क्या होगा, क्या इस दाता को नहीं मालूम, ये तुम बच्चों को मालूम है कि कहां जाएगी। बच्चे कहना बड़ा सहज है, हमें निश्चय है, निश्चय की परख परीक्षा के समय होती है, परिस्थिति के समय स्थिति की चेकिंग होती है, क्या अब हमारी स्थिति इस परिस्थिति का मुकाबला करने में कितने तक तैयार हो सकी। हम कह देते हैं बाबा कौन है, कहते बाबा तो विघ्न विनाशक है, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, आया कोई विघ्न, शक्ल तो देखो आज क्या बात हुई, जैसे सारी किश्ती डूब गई आज। कहते दीदी जी आपको क्या मालूम क्या हुआ हमारे यहाँ, बहुत ऐसा। बाबा याद है, कहते बाबा तो याद ही है बाबा तो याद ही है, वो तो परमानेंट हो चुका है। लेकिन सचमुच अगर बाबा विघ्न विनाशक है और विघ्न आया है, मुझे बाबा ने साथ कहा है तू भी मास्टर विघ्न विनाशक है, तुझे जरूरत नहीं तो गणेश जी के मंदिर में जाके पूजन करके विघ्न विनाशक से प्रार्थना कर, विघ्न विनाश करवाने के लिए आराधना कर, लेकिन मैंने तुझे भी जन्म देते ही टाइटल दे दिया है तू मास्टर है, अगर मैं दाता हूं तो तू मास्टर दाता है। इसलिए बच्चे ऐसे विघ्न के समय याद रखना मैं विघ्न विनाशक हूं। अब चेक करना वो विघ्न आपकी मनोस्थिति को विनाश कर रहा है, आपकी योग की कड़ी को विनाश कर रहा है, आपकी खुशी को विनाश कर रहा है, या आप विघ्न विनाशक बन उस स्थिति को बना कर रखने के लिए अपने जीवन को संपन्न बनाया हुआ है। अब आपको पता चले कि मैं विघ्न विनाशक हूं, रियली मैं हूं, विघ्न आया है उसके लिए क्या करना है वो मैं सब कर रही हूं, जो उपाय करने हैं, जो सहयोग लेने हैं, जो राय लेनी है वो हम सब करेंगे। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे मैं तो विघ्न विनाशक हूं आने दो विघ्न, नहीं ऐसा नहीं है। बाबा कहते पुरुषार्थ को कभी भूलो नहीं, पुरुषार्थ हर रूप से करना है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए याद रखना कि मैं कौन हूं और मेरा बाबा कौन, जिससे आपके मनोस्थिति में परेशानी ना आए, आपकी योग की स्थिति विस्मृत ना हो जाए, बाबा आपकी नजरों से दूर ना हट जाए। अगर योग युक्त स्थिति रहेगी और अगर आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनी रहेगी ऐसे समय पर भी, तो बच्चे विघ्न आएगा जरूर, लेकिन विघ्न सदा काल के लिए नहीं होता है, कई कर्मों के कई हिसाब किताब इतने कड़े होते हैं कि वो विघ्न रूप आकर भी चुकतू होने होते, वो ऐसे चुकतू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विघ्न आपका हिसाब किताब ज्यादा है, कड़ा है, और बहुत समय का काफी बोझा है, वो कोई विघ्न आकर भी, वो मुझे थोड़ा कष्ट पहुंचा कर भी वो चला जाएगा, लेकिन जिस स्थिति को मैंने बनाया है, निर्माण किया है, उसको मुझे नाश नहीं होने देना है। इस बात का उस समय हम ख्याल रखें, कई बार हम इन बातों को विस्मृत हो जाते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहले मास्टर अपनी स्थिति का तो निर्माण करे। हम दूसरी चीजों के निर्माण सोचने लगते हैं, लेकिन अपनी स्थिति का निर्माण विस्मृत हो जाते हैं। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे निश्चय उसकी निशानी है, निश्चय बुद्धि बच्चा सदा निश्चिंत होगा। हम तो छोटी छोटी चिंता लगा लेते हैं, क्यों हमारे चेहरे पर वो रौनक वो रूहानगी नहीं रहती? छोटी छोटी बातें परिवार में, व्यवहार में, व्यापार में छोटी छोटी बातें आती हैं, उतार चढ़ाव लाने वाली, चाहे वो अलौकिक जीवन में है या लौकिक जीवन में है, वो हमारी मनोस्थिति पर प्रभाव डाल जाते। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आपका चेहरा और आपकी चलन सेवा करेगी। और चेहरा तब चलन सेवा करेगा जब चेहरे पर आई हुई परिस्थिति का प्रभाव ना आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कुछ हिसाब किताब मुझे योग से चुप्त करने हैं, कुछ हिसाब किताब हमको भोग से चुप्त करने हैं, लेकिन चुप्त सब होने हैं, क्योंकि बाबा स्वच्छ करके हमको अपने साथ ले जाने वाला है। आपने सुना है कितनी बड़ी बात आ जाए, लेकिन बाबा कहते हैं संशय ना आए। जिसका आप एक एग्जाम्पल किसी क्लास में सुन रहे थे, मैंने भी कहीं सुना यहीं पर ही, कि कैसे वो माता जब किचन में गई है और गैस इकट्ठी हो गई है सारी रसोई में, क्योंकि गैस खुली छूट गई, उसे मालूम नहीं था, और उसने माचिस लगाई और माचिस लगते ही वो गैस ने उसको पकड़ लिया और उसको जला दिया। सारे परिवार वालों को ये संकल्प है, दैवी परिवार और लौकिक परिवार, इसने अपनी जीवन की हड्डी हड्डी ईश्वर को दी है, पल पल और क्षण क्षण इन्होंने प्रभु को दिया है, ऐसे समय पर ईश्वर ने इनको मदद क्यों नहीं की? बाबा ने कहा, बाप की मदद बड़ी गुप्त है, शो करने वाली मदद नहीं है। बच्ची ने अपना सर्वस्व ईश्वर की सेवा में लगाया, यथाशक्ति योग लगाती, यथाशक्ति सर्विस करती रही, लेकिन बच्ची के पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब काफी कड़े अभी भी शेष थे। ये उसके हिसाब किताब एक थोक में चुकतू करने का तरीका मिल गया, पूरे ही चुकतू, जल्दी से जल्दी चुकतू हो रहे। ये बच्ची योग से नहीं कर सकती थी, इतना योग इसका नहीं लग सकता था जो सारे चुकतू हो जाए। बच्चे कोई भी परिस्थिति जब आपके अनुकूल होती है तो कहते हैं बाबा तू बड़ा कल्याणकारी है, बाबा तू तो बड़ा ही मीठा और बड़ा प्यारा है, और जब कोई बात आपके अनुकूल ना हो कहते बाबा को क्या याद करूं, बाबा भी तो नहीं सुनता, वो भी तो परिस्थिति आई है, वो भी तो मेरा मदद नहीं करता। बाबा कहते हैं बाबा तो तुमने कह दिया, लेकिन स्थिति और परिस्थिति दोनों के समय तेरी स्थिति एक रस है। हम समझते हैं फायदे में बाबा है और नुकसान में बाबा को छोड़ो, जैसे भक्त लोग करता है, तो बाबा कहते तुम भक्त थोड़ी हो, अगर ये समझते हो कल्याण है तो कोई भी परिस्थिति तेरी परिस्थिति तेरे लिए जरूरी है। इसलिए बच्चे इस परिस्थिति को फेस करना, मुकाबला करना, मैं तेरे साथ हूं भूलना नहीं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ रहूंगा, तू ये ना समझ मैं अकेला हो गया। लेकिन हम समझते परिस्थिति को ठीक क्यों नहीं किया, नहीं ठीक किया इसलिए बाबा मेरे साथ ही नहीं। बाबा कहते ये तेरी गलती है, मैं सदा तेरे साथ हूं। युग कल्याण का है, बाबा कल्याणकारी है, बाबा सदा साथी है और साथ है और साथ ही रहेगा, ये हम कभी भूल ना जाए। परिस्थितियां और स्थितियां, क्योंकि कुछ ऐसे हिसाब किताब हैं जिन्हें हमें भोग कर पूरा करना है, और कुछ ऐसे हिसाब किताब हैं जो योग से चुकते होते। हम चाहते हैं कि भोगना ना भोगें। बाबा कहते हैं अपने से पूछो योग कितना लगाते हैं। आप सुबह अमृत वेले बैठते हो, कभी सामने बैठ के देखो, मैं समझती हूँ 40% तो नहीं 60% लोग आंखें बंद करके बैठे होते और उनसे पूछो आज कैसा रहा योग, कहते दीदी बड़ा ही आनंद आया। और आपने भी 3-4 दिन पहले की वाणी सुनी होगी, बाबा ने यही बात कही थी कि बच्चे सोकर भी बच्चे जब उठते हैं तो उनको बड़ी ऐसा लगता है बड़े फ्रेश हो गए, क्योंकि सोने के बाद भी थकावट ठीक हो जाती है और ऐसा लगता है कोई अब स्फूर्ति आ गई और कह देते हैं कोई काम हो तो मेरे को बता दीजिए अब मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही योग युक्त बच्चा भी योग में भी ऐसा ही अनुभव करता है कि अब मैं बड़ा फ्रेश हो गया। तो वास्तव में हरी सब्जी का कीड़ा हरा ही होता है, सफेद अमरूद का कीड़ा सफेद ही होता है। जब बच्चे योग में बैठते हैं तो माया उनको सुला देती और सोकर जब वो योग पूरा हो गया उठते हैं कहते आज बड़े फ्रेश हो गए, आज योग बहुत अच्छा लगा। कारण क्या हुआ हमें पता ही नहीं चल पाया कि योग नहीं था, ये नींद का आराम था, क्योंकि रात को आराम पूरा हो नहीं पाया, लेट सोए थे, कमरे में और भी बहने हैं, कोई लाइट जलाती, कोई खांसी करती, नींद पूरी हुई नहीं और क्लास में ऐसा आनंद आया कि बहुत नींद आई। कहते आज मेरा बहुत योग लगा, कल मैं जरूर जाऊंगी योग में। बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो अचानक दादी ने कहा आप बैठ जाओ तो मैं आपके पास बैठ गई। अभी तो आप सबको खाने पर भी जाना होगा, बाकी मैं सुनाती जाऊंगी तो सुनाती जाऊंगी। ओम शांति करती हूँ, जाना पड़ेगा। शाम को भी जो क्लास होगी वो यही होगी, इसी हॉल में ही होगी, रात्रि क्लास भी यहीं पर ही होगी 5:30 में। 2 मिनट बाबा को याद करके जाए ना, हम कहते हैं जी हमारा मूल सब्जेक्ट है योग और अभी क्या सब्जेक्ट है, खाने पर रश ना हो जाए हम पहले पहुंचे। अब कहना देखो प्रैक्टिकल क्या चीज होती है, हम सब आते हैं क्लास में कहीं योग ना लग जाए, योग पूरा हो तो आए, तो अभी भी 3 मिनट का योग भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई कारण होगा जो जा रहे हैं, आप लोग बैठे हैं तो बैठे रहिए, 3 मिनट बाबा को याद कर दीजिए।